एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब और एक पूरी परियोजना पर बात करने वाले हैं जिसने अमेरिकी इतिहास की पारंपरिक समझ को न सिर्फ चुनौती दी है
बल्कि उसे जड़ से हिला दिया है कह सकते हैं।
हाँ, मैं हूँ आपकी पहली मेजबान
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान।
आज हम निकोल हना जोन्स द्वारा संपादित द 1619 प्रोजेक्ट ए न्यू ओरिजिन स्टोरी के स्रोतों पर आधारित इस चर्चा में गहराई से उतरेंगे।
जी,
और ये किताब, जैसा आपने कहा, अमेरिका की कहानी को 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा से नहीं,
नहीं बिल्कुल नहीं,
बल्कि 1619 से शुरू करने का तर्क देती है।
हाँ, 1619 वो साल जब पहले गुलाम बनाए गए अफ्रीकी लोग वर्जीनिया की अंग्रेजी बस्ती में लाए गए थे।
और ये सिर्फ एक तारीख बदलने की बात नहीं है, है ना?
नहीं, ये सवाल है कि किसी देश की असली नींव क्या है।
बिल्कुल। और ये आज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट तर्क देता है कि अमेरिका में आज भी जो मौजूद है, नस्लीय असमानता, राजनीतिक बहसें,
यहाँ तक कि संस्कृति भी,
हाँ, उसकी जड़ें सीधे गुलामी और उसके, मतलब 400 साल के असर में हैं।
बिल्कुल, ये इतिहास को सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं मानता,
नहीं
बल्कि एक जीवित शक्ति मानता है जो वर्तमान को लगातार आकार दे रही है।
तो चलिए इन स्रोतों को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये नजरिया अमेरिकी पहचान और इतिहास को कैसे बदलता है।
इस पूरी परियोजना की जो मुख्य आवाज हैं, वो हैं निकोल हना जोन्स।
हाँ, उनका परिचय भी इस काम को समझने के लिए जरूरी है। वो सिर्फ एक लेखक या संपादक नहीं है।
सही कहा, वे एक बेहद सम्मानित अमेरिकी खोजी पत्रकार हैं।
जी,
उनका काम मुख्य रूप से अमेरिका में नागरिक अधिकारों, नस्लीय न्याय और शिक्षा में अलगाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा है।
और उन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है, जो पत्रकारिता का बहुत बड़ा सम्मान है।
हाँ, और इतना ही नहीं, उन्हें मैकार्थर फाउंडेशन का प्रतिष्ठित जीनियस ग्रांट भी मिला है।
अच्छा,
जो असाधारण प्रतिभा और क्या कहते हैं, रचनात्मकता वाले लोगों को दिया जाता है।
वे द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन से भी जुड़ी रहीं काफी समय तक।
जी, और अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक अश्वेत विश्वविद्यालयों में से एक है, वहाँ नस्ल और पत्रकारिता पर।
तो उनकी खासियत क्या है? एक तो उनकी गहरी पत्रकारिता वाली रिसर्च,
बिल्कुल,
है ना, तथ्यों के सामने लाने का कौशल,
बिल्कुल।
दूसरा, कहानी कहने की उनकी अद्भुत क्षमता जो इतिहास को एकदम जीवंत कर देती है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, एक अश्वेत अमेरिकी महिला के तौर पर उनका अपना निजी अनुभव और पारिवारिक इतिहास।
अच्छा, ये महत्वपूर्ण है।
हाँ, ये उन्हें इस विषय पर अकादमिक ज्ञान के साथ साथ एक नैतिक और भावनात्मक अधिकार भी देता है। वो सिर्फ इतिहास लिख नहीं रही, वो उस इतिहास का हिस्सा हैं जिसे वो बयां कर रही हैं।
तो अब आते हैं किताब पर। जैसा हमने शुरू में कहा, ये कोई पारंपरिक इतिहास की किताब नहीं है जो एक ही लेखक ने लिखी हो। इसकी बनावट कैसी है?
ये एक संकलन है, मतलब एक कोलाज की तरह समझिए।
अच्छा।
इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों, इतिहासकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, आलोचक, इनके द्वारा लिखे गए 18 निबंध हैं।
18 निबंध?
जी, और हर निबंध अमेरिकी जीवन के किसी खास पहलू को, जैसे लोकतंत्र, पूंजीवाद, संगीत, चिकित्सा, कानून, उसको गुलामी और नस्लवाद के चश्मे से देखता है।
और इन निबंधों के साथ साथ इसमें कविताएं और कहानियां भी हैं।
हाँ, 17 कविताएं और छोटी कहानियां जो अश्वेत कलाकारों और लेखकों ने लिखी हैं।
तो ये क्या करती हैं?
ये रचनात्मक हिस्से इन ऐतिहासिक तर्कों में, आप कह सकते हैं, भावनात्मक गहराई और मानवीय अनुभव जोड़ते हैं। वो दर्द, संघर्ष, उम्मीद, प्रतिरोध, जो आंकड़ों और तथ्यों से परे है।
समझ गई।
किताब का सबसे मुख्य और कह सकते हैं विवादास्पद तर्क यही है कि अमेरिका की असली बुनियाद शायद 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के साथ नहीं,
बल्कि 1619 में।
हाँ, 1619 में पहले गुलामों के आने के साथ रखी गई। ये कहता है कि गुलामी और उसके बाद नस्लवाद अमेरिकी पहचान, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और संस्कृति के हाशिए पर पड़ी कोई दुखद घटना नहीं,
बल्कि उसके मूल में है,
उसके डीएनए में है।
बिल्कुल,
उसके डीएनए में, उसके मूल में है।
यानी ये अमेरिका की एक नई उत्पत्ति कहानी बताने की कोशिश है।
हाँ, एक ऐसी कहानी जो ज्यादा ईमानदार हो, ज्यादा जटिल हो,
और उन असहज सच्चाइयों का सामना करती हो जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
सही, ये किताब हमें 400 साल पीछे ले जाती है और दिखाती है कि कैसे गुलामी को बनाए रखने के लिए जो फैसले लिए गए,
उनका असर आज भी है।
हाँ, उनका असर आज भी अमेरिका के लगभग हर पहलू में देखा जा सकता है।
जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे?
हाँ, जैसे आज का आधुनिक अमेरिकी पूंजीवाद, जिसके कुछ तौर तरीके आप मानेंगे नहीं, सीधे बागानों की क्रूर व्यवस्था से निकले हैं।
अच्छा।
या शहरों में ट्रैफिक जैम के पैटर्न भी, जो पुराने नस्लीय अलगावों की नीतियों से जुड़े हो सकते हैं।
ये तो मैंने सोचा भी नहीं था।
या स्वास्थ्य सेवाओं में नस्लीय भेदभाव हो, या फिर दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी संगीत की धड़कन। किताब इन सबको 1619 से जोड़ने की कोशिश करती है।
चलिए, अब कुछ मुख्य निबंधों और उनके तर्कों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत निकोल हान्ना जोन्स के अपने परिचयात्मक निबंध डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से करते हैं।
हाँ, ये निबंध बहुत व्यक्तिगत भी है और राजनीतिक भी।
इसमें वो अपनी पारिवारिक कहानी को अमेरिका की बड़ी कहानी से जोड़ती हैं।
जी।
वे तर्क देती हैं कि 1776 में जब थॉमस जेफरसन जैसे नेताओं ने सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, जैसे ऊंचे आदर्श लिखे,
तब वे शब्द उन्हीं के लिए झूठे थे क्योंकि वे खुद गुलामों के मालिक थे।
वो आजादी और समानता सिर्फ श्वेत संपत्ति वाले पुरुषों के लिए थी, है ना?
बिल्कुल। और यही उनका सबसे शक्तिशाली दावा आता है कि असल में अश्वेत अमेरिकियों ने ही अपने सदियों लंबे संघर्ष से
अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते हुए
उन आदर्शों को अमेरिका में सबके लिए हकीकत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वो कहती है कि अश्वेत अमेरिकी इस देश के लोकतंत्र के परफेक्टर यानी सिद्धि करता है।
बिल्कुल। ये गहरा विरोधाभास है कि अमेरिका की आजादी की कहानी उसकी गुलामी की कहानी से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।
इसी कड़ी में इतिहासकार मार्था एस जोन्स का निबंध है रेस यानी नस्ल पर।
हाँ, और ये नस्ल की अवधारणा पर ही सवाल उठाता है।
मतलब ये विचार कि इंसान अलग अलग नस्लों में बटे हैं,
जो आज हमें शायद स्वाभाविक लगे।
हाँ, लेकिन जोन्स बताती हैं कि ये कोई बायोलॉजिकल सच्चाई नहीं है।
बिल्कुल। उनका तर्क है कि नस्ल एक सामाजिक और कानूनी इजाद है
जिसे गढ़ा गया।
हाँ, जिसे खास तौर पर अफ्रीकियों को अनिश्चित काल के लिए गुलाम बनाने और मूल अमरीकी लोगों की जमीनें छीनने को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया था।
मतलब नस्लवाद गुलामी का नतीजा नहीं था।
नहीं, बल्कि गुलामी को संभव बनाने और उसे टिकाऊ बनाने के लिए नस्लवाद की विचारधारा जरूरी थी।
अच्छा।
कानून ने धीरे धीरे श्वेत होने को आजादी और संपत्ति के अधिकार से जोड़ा, जबकि अश्वेत होने को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गुलामी से।
ये सोचना भी कितना अजीब है कि कैसे कानून और समाज मिलकर ऐसी श्रेणियां बना सकते हैं जो लोगों की पूरी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय कर दें।
और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है ना, दुनिया भर में ऐसे उदाहरण मिलते हैं।
बिल्कुल। अब आते हैं एक और काफी चौंकाने वाले तर्क पर,
मैथ्यू डिज़मोंड का निबंध कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद पर।
हाँ, ये सीधे तौर पर गुलामी को आधुनिक अमेरिकी पूंजीवाद की कार्यप्रणाली से जोड़ता है।
जी हाँ, ये स्थापित धारणा को चुनौती देता है कि अमेरिकी पूंजीवाद का विकास केवल उत्तर के उद्योगों में हुआ।
डेज़मंड तर्क देते हैं कि दक्षिण के कपास के बागान, जहां गुलामों से काम लिया जाता था,
वो आधुनिक पूंजीवाद की प्रयोगशाला जैसे थे।
प्रयोगशाला? कैसे?
वहां मुनाफे को अधिकतम करने के लिए जिस तरह इंसानों का शोषण किया गया, उनके हर मिनट के काम का हिसाब रखा गया,
जैसे आज की स्प्रेडशीट में होता है।
बिल्कुल।
गुलामों को संपत्ति की तरह मूल्यांकित किया गया और हिंसा के जरिए उत्पादकता बढ़ाने की जो निर्मम तकनीकें विकसित की गईं,
वही बाद में फैक्ट्रियों और आधुनिक व्यापारिक प्रबंधन का आधार बनी।
हाँ, डेज़मंड का यही तर्क है। ये सीधे उस मुख्य संदेश से जुड़ता है जिसे हम बाद में और विस्तार से देखेंगे। गुलामी अमेरिकी समृद्धि का आधार थी, न कि कोई छोटी मोटी घटना।
सही।
डेज़मंड दिखाते हैं कि कैसे मुनाफे के लिए इंसानी क्रूरता का वो बिजनेस मॉडल आज भी कहीं ना कहीं अमेरिकी पूंजीवाद की रगों में दौड़ता है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आज की आर्थिक व्यवस्थाओं की नींव में क्या क्या छिपा हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं का एक क्षेत्र लें, पत्रकार लिंडा विलारोसा अपने निबंध मेडिसिन यानी चिकित्सा में बताती हैं
कि आज अमेरिका में अश्वेत और श्वेत लोगों के स्वास्थ्य परिणामों में जो बड़ा अंतर है,
हाँ, उसकी जड़ें भी गुलामी के दौर तक जाती हैं।
ये बहुत ही परेशान करने वाला इतिहास है।
वे बताती हैं कि कैसे गुलाम बनाए गए अश्वेत पुरुषों और महिलाओं पर उनकी मर्जी के बिना भयानक और दर्दनाक मेडिकल प्रयोग किए गए।
स्त्री रोगों के इलाज के कई शुरुआती तरीके अश्वेत गुलाम महिलाओं पर बिना बेहोशी के दवा दिए किए गए प्रयोगों से विकसित हुए हैं। ये तो भयानक है।
हाँ,
और इसी दौर में ये खतरनाक और झूठी धारणा फैलाई गई कि अश्वेत लोगों को दर्द कम महसूस होता है या उनकी शारीरिक बनावट अलग होती है।
और विलारोसा तर्क देती हैं कि ये नस्लीय मिथक आज भी जाने अनजाने चिकित्सा जगत में मौजूद हैं।
जी, इसके कारण आज भी अश्वेत मरीजों के दर्द को कम आंका जाता है, उन्हें सही इलाज मिलने में देरी होती है
और नतीजतन स्वास्थ्य व्यवस्था पर उनका भरोसा कमजोर होता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुराने पूर्वाग्रह आज भी जानलेवा साबित हो सकते हैं।
लेकिन दमन की इस कहानी के साथ साथ प्रतिरोध और संस्कृति रचने की अद्भुत कहानी भी है।
हाँ, सांस्कृतिक आलोचक वेस्ली मॉरिस अपने निबंध म्यूजिक यानी संगीत में यही दिखाते हैं।
वे तर्क देते हैं कि अमेरिकी लोकप्रिय संगीत की आत्मा, चाहे वो गॉस्पेल हो, ब्लूज, जैज, रॉक एंड रोल, सोल, R&B या हिप हॉप, उसकी जड़ें उन संगीत परंपराओं में हैं जिन्हें गुलाम अफ्रीकियों और उनके वंशजों ने अमेरिका की धरती पर रचा।
बिल्कुल, ये संगीत उनके दुख, दर्द, आशा और प्रतिरोध की अभिव्यक्ति था।
ये गुलामी की अमानवीयता के बीच अपनी इंसानियत को बचाए रखने का जरिया बना।
हाँ, और मॉरिस ये भी दिखाते हैं कि कैसे इसी अश्वेत संगीत को श्वेत अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनाया, उसका व्यवसायीकरण किया
और अक्सर उसका श्रेय लिए बिना या उसे हल्का करके पेश किया।
सही, ये अमेरिकी संस्कृति का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे ज्यादा नकल किया जाने वाला वैश्विक निर्यात है, जिसकी जड़ें गुलामी के दर्द में हैं।
और अंत में एक और जरूरी कड़ी जोड़ते हैं, नागरिक अधिकार वकील ब्रायन स्टीवेंसन।
हाँ, अपने निबंध पनिशमेंट यानी दंड में
वे गुलामी से लेकर आज अमेरिका में मौजूद सामूहिक कैद मैस इनकार्सरेशन
यानी अश्वेत लोगों का अपनी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा संख्या में जेलों में बंद होना,
हाँ, उस तक एक सीधी रेखा खींचते हैं।
वे बताते हैं कि कैसे गृह युद्ध के बाद जब 13वां संशोधन पारित हुआ जिसने गुलामी को खत्म किया,
तो उसमें चालाकी से एक अपवाद या लूपहोल छोड़ दिया गया।
जी हाँ, कि अपराध के लिए सजा के तौर पर गुलामी या जबरन मजदूरी करवाई जा सकती है,
और इसी लूपहोल का भयानक दुरुपयोग हुआ।
बिल्कुल, इसके तुरंत बाद दक्षिण के राज्यों ने ब्लैक कोड्स जैसे कानून बनाए
जिनसे अश्वेत लोगों को बहुत मामूली अपराधों जैसे आवारागर्दी के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था,
और फिर उन्हें कॉन्विक्ट लीजिंग नाम की प्रथा के तहत निजी कंपनियों या बागानों को सस्ते मजदूर के रूप में पट्टे पर दे दिया जाता था।
ये गुलामी का ही एक नया कानूनी रूप था।
हाँ, स्टीवेंसन तर्क देते हैं कि नस्ली नियंत्रण का ये सिलसिला रोका नहीं।
कॉन्विक्ट लीजिंग के बाद जिम क्रो कानून आए,
यानी दक्षिण के राज्यों में नस्ली अलगाव और भेदभाव को कानूनी जामा पहनाने वाले नियम।
फिर 20वीं सदी में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध जैसी नीतियां आईं,
और आज पक्षपाती पुलिसिंग और सजा नीतियां हैं। इन सब के कारण अश्वेत समुदाय लगातार आपराधिक न्याय प्रणाली के निशाने पर रहा है।
स्टीवेंसन का तर्क है कि आज की सामूहिक कैद प्रणाली भी एक तरह से नस्ली नियंत्रण का ही आधुनिक रूप है।
तो इन सभी निबंधों और कहानियों से गुजरने के बाद कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं?
सबसे पहला तो यही है कि अमेरिका की राष्ट्रीय कहानी को फिर से देखने और परिभाषित करने की जरूरत है।
हाँ, जिसमें 1619 को 1776 जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा अहमियत मिले।
ये इतिहास को सिर्फ विजेताओं के नजरिए से नहीं बल्कि हाशिए पर रखे गए लोगों के अनुभव से भी देखने का आग्रह है।
दूसरा बड़ा संदेश ये है कि गुलामी सिर्फ दक्षिण की समस्या नहीं थी, बल्कि ये पूरे अमरीकी राष्ट्र की आर्थिक नींव और समृद्धि का आधार थी।
इसने सिर्फ खेती नहीं बल्कि बैंकिंग, बीमा, शिपिंग और कपड़ा उद्योग सबको फायदा पहुंचाया।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी देश की दौलत और विकास के कहानियों के पीछे अक्सर कौन से अनदेखे या अनगहे शोषण छिपे हो सकते हैं।
शायद हम भारत के संदर्भ में उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभावों के बारे में भी इसी तरह सोच सकते हैं।
बिल्कुल। तीसरा जो मुझे बहुत प्रेरक लगा वो ये कि अश्वेत अमरीकी अपने अधिकारों और आजादी के लिए लगातार लड़ते हुए
अनजाने में ही सही अमरीकी लोकतंत्र को ज्यादा सच्चा और समावेशी बनाने वाले मुख्य कर्ता रहे हैं।
हाँ, उन्होंने उन आदर्शों को गंभीरता से लिया जिन्हें लिखने वालों ने शायद पूरी तरह से नहीं अपनाया था, और उन्हें सबके लिए लागू करवाने की लड़ाई लड़ी।
ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि एक सतत संघर्ष है, और हाशिए के समूह अक्सर इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।
भारत में भी हमने दलितों, महिलाओं और अन्य समूहों के आंदोलनों में ये देखा है।
चौथा संदेश ये है कि व्यवस्थागत नस्लवाद लगातार बना रहा है, बस उसके रूप बदलते रहे हैं।
गुलामी खत्म हुई तो कॉन्विक्ट लीजिंग आया, फिर जिम क्रो, फिर रेडलाइनिंग
और आज सामूहिक कैद और अन्य प्रकार के भेदभाव।
ये दिखाता है कि सामाजिक अन्याय की जड़ें पिपी दहली होती हैं और विचारधाराएं कैसे नए नए रूपों में जिंदा रहती हैं।
क्या भारत में जाति व्यवस्था की निरंतरता और उसके बदलते स्वरूपों में भी कुछ ऐसी ही गतिशीलताएं दिखाई देती हैं? ये जरूर सोचने का विषय है।
और पांचवां, इन सब के बावजूद या शायद इसी वजह से अश्वेत अमेरिकियों ने असाधारण प्रतिरोध, लचीलापन और एक अद्भुत मौलिक संस्कृति का निर्माण किया है।
ये सिर्फ सहने की कहानी नहीं है, बल्कि रचने की भी कहानी है। संगीत, भाषा, भोजन, साहित्य, आध्यात्मिकता, जिसने अमेरिकी पहचान को गहराई से प्रभावित और समृद्ध किया है।
इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां और विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं और याद रह जाते हैं।
हाँ,
एक तरह से पूरी परियोजना का सार इस सवाल में है, क्या होगा अगर हम ये मान लें कि अमेरिकी कहानी को समझने के लिए 1776 से ज्यादा महत्वपूर्ण साल 1619 हो।
ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं, ये नजरिए में बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव है।
निकोल हन्ना जुल्स का ये कथन भी बहुत दमदार है, जिसका भावार्थ है, हमारे लोकतंत्र के संस्थापक आदर्श स्वतंत्रता और समानता जब लिखे गए थे तब ये शब्द खोखले थे।
अश्वेत अमेरिकियों ने सदियों के संघर्ष से उन्हें सबके लिए सच बनाने की लड़ाई लड़ी है। ये अश्वेत संघर्ष को अमेरिकी देशभक्ति के केंद्र में रखता है, उसे किनारे पर नहीं।
मैथ्यू डिसमंड का पूंजीवाद पर कहा गया ये वाक्य रोंगटे खड़े कर देता है। अमेरिकी पूंजीवाद के निर्ममता को समझना है तो बागान से शुरुआत करनी होगी। ये गुलामी के आर्थिक असर को सिर्फ अतीत की बात नहीं बल्कि वर्तमान की हकीकत बताता है।
और ब्रायन स्टीवेंसन का ये अवलोकन कि अमेरिका में नस्ली अन्याय की कहानी गुलामी पर खत्म नहीं होती, ये रूप बदलती रहती है।
नस्लीय भेद का वही तर्क जिसने गुलामी को सही ठहराया, बाद में कॉन्विक्ट लीजिंग, फिर जिम क्रो और अब सामूहिक कैद का आधार बना।
ये दिखाता है कि कैसे अन्याय की निरंतरता बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं खुद को बदल लेती हैं, लेकिन मूल विचारधारा बनी रहती है।
तो अब सवाल उठता है कि इन सब बातों का जो अमरीकी इतिहास और समाज के बारे में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, हम इससे क्या सीख सकते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें आज की दुनिया की घटनाओं को समझने के लिए एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ देता है।
हाँ।
जब हम अमेरिका में या कहीं और भी नस्लीय तनाव, आर्थिक असमानता या वोटिंग अधिकारों पर बहस देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमें याद दिलाता है कि ये मुद्दे अचानक हवा से पैदा नहीं हुए।
इनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं।
हाँ, और ये समझ हमें सतही प्रतिक्रियाओं से बचा सकती है।
दूसरा, ये हमें ज्यादा जागरूक और आलोचनात्मक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है।
हमें जो इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाता है या जो राष्ट्रीय कहानियां हमें सुनाई जाती हैं, वे अक्सर अधूरी या एक तरफा होती हैं।
ये किताब हमें उन पर सवाल उठाना सिखाती है, अलग अलग नजरियों को खोजना सिखाती है
और ये समझना सिखाती है कि कौन कहानी सुना रहा है और क्यों।
तीसरा, ये हमें अपने खुद के अंदरूनी पूर्वाग्रहों यानी इंटरनल बायसेस को पहचानने और चुनौती देने में मदद कर सकता है। जब हम समझते हैं कि नस्ल जैसी चीजें कैसे सामाजिक रूप से गढ़ी गईं और कैसे कुछ समूहों के बारे में झूठी और हानिकारक धारणाएं फैलाई गईं,
तो हम अपने सोचने के तरीकों के प्रति ज्यादा सचेत हो सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं कि कहीं हम भी तो अनजाने में ऐसी धारणाओं को नहीं ढो रहे।
बिल्कुल। और चौथा, यह हमें राष्ट्रीय प्रतीकों, नायकों और कहानियों को ज्यादा जटिलता और ईमानदारी से देखने का नजरिया देता है।
किसी भी देश या समाज की कहानी सिर्फ गौरवशाली पलों की नहीं होती, उसमें मुश्किल और शर्मनाक अध्याय भी होते हैं।
सही। एक परिपक्व नजरिया वह है जो दोनों को स्वीकार कर सके, उनसे सीख सके और बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर सके।
पेशेवर जिंदगी में भी इसका उपयोग है ना?
हाँ, चाहे आप शिक्षक हों, नीति निर्माता, पत्रकार या किसी कंपनी में काम करते हों, ये समझ आपको ज्यादा न्यायसंगत और समावेशी माहौल बनाने में मदद कर सकती है।
ये समझने में कि क्यों कुछ समुदायों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है
या क्यों कुछ व्यवस्थाएं सबके लिए समान रूप से काम नहीं करती।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि इतिहास वाकई में कभी मरता नहीं, वो बस अलग अलग रूपों में हमारे साथ जीता है।
हाँ,
ये किताब गुलामी को अमेरिकी कहानी के केंद्र में रखकर आज के उलझनों की गांठें खोलने में मदद करती है।
ये दोष देने से ज्यादा समझने पर जोर देती है।
और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली बात ये रही कि कैसे गहरे दमन और अन्याय के बीच भी इंसानियत न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि प्रतिरोध करती है, रचती है
और अनजाने में ही सही बड़े बदलावों का कारण बनती है।
अश्वेत अमेरिकियों का संघर्ष सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं थी, उसने अमेरिका के लोकतंत्र को सबके लिए बेहतर बनाया।
ये किताब इतिहास का एक ज्यादा ईमानदार हिसाब मांगती है ताकि वर्तमान को सुधारा जा सके।
हाँ, ये एक मुश्किल लेकिन जरूरी बातचीत की शुरुआत है।
अतीत की सच्चाइयों का सामना किए बिना शायद एक सच्चा और न्यायपूर्ण भविष्य बनाना संभव नहीं है।
और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर किसी राष्ट्र की नींव की कहानी, उसकी उत्पत्ति की कथा उसके आज और कल के लिए इतनी मायने रखती है, तो हमें अपने समाज, अपनी संस्थाओं, अपनी परंपराओं और अपनी मान्यताओं की नींव की कहानियों पर कितना और किस नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है।
हम कौन सी कहानियां सुनते आए हैं और कौन सी कहानियां हैं जो शायद अनसुनी रह गई हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।